तो बस मेरा है।
ओम शांति। सब बहुत खुश हैं आज आदरणीय दीदी जी को देख करके। दीदी जी तो सामने ऐसे विराजमान हो गए हैं आकर, जैसे चेतन देवी की मूर्ति, खिला हुआ गुलाब एकदम। हम एक हाथ की ताली से दीदी जी का अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप आए, बाहर आई, हम सबके दिल खिल गए, क्योंकि दीदी जी बाबा की वो तराशी हुई मूरत हैं, जिनके लिए कहना नहीं पड़ता कि अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करो। आपका चेहरा और चलन स्वयं ही भाग्य विधाता का दर्शन कराता है, और आपकी जीवन गाथा एक अनोखी जीवन गाथा है। मैंने सारी सुनी है, पर अभी अगर सारी सुनाने लगूंगी तो पूरी क्लास मेरी ही हो जाएगी, इसलिए उसको समरी करके सुनाती हूँ। आदरणीय दीदी जी ने सिर्फ 14 वर्ष की आयु में ही बाबा को पहचान लिया, और उससे पहले आपका जीवन किसी और लक्ष्य को लेकर के था, लेकिन जैसे ही जगदम्बा माँ को देखा तो एकदम उनकी बातों के तीर लगे, और बाबा को देखते ही आप बाबा पर तो आशिक हुई सो हुई, लेकिन भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से आपको बोला कि मैं तुम पर आशिक हुआ हूँ। ये ऐसी महान आत्मा है। और केवल 16 वर्ष की आयु में आपने अपना भौतिक उपलब्धियों से भरा हुआ बहुत मेटेरियलिस्टिक जीवन एकदम त्याग तपस्या के नाम पर भगवान के आगे समर्पित कर दिया। तब से बाबा ने आपको बहुत यूज किया है। सबसे पहला चित्र जो बाबा ने बनवाया था, बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं, मुरली में भी थोड़े दिन पहले बाबा ने याद किया कि बाबा ने बंदर हटाकर नलिनी बच्ची को डाल दिया, और वो चित्र बाबा ने सभी सेंटर्स पर भेजा। और उसके बाद अभी ही मैं समझती हूँ, 15 दिन पहले की एक मुरली थी जिसमें बाबा ने आपके लौकिक पिताजी को याद किया, काकू भाई, जिन्होंने बच्ची को दहेज में सेंटर बना करके दिया। ये पहला मिसाल था अपने यज्ञ में, पहला मिसाल आपके लौकिक पिताजी ने आपको वर्षे में दहेज में सेंटर खोल के दिया। और वो घाटकोपर सेवा केंद्र बॉम्बे का अभी बेहद की विशाल सेवाएं करने के निमित्त है, अपनी गोल्डन जुबली क्रॉस कर चुका है, और वंडरफुल सेवाएं दीदी जी द्वारा हुई हैं। आपने डाकू पंचम सिंह जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के आगे समर्पण किया था, उनको उम्र कैद हुई थी, उस जेल में दीदी जी सेवा करने गए थे और वो डाकू से ब्रह्मा कुमार बन गया, और उसकी उम्र कैद माफ होकर के वो एक अच्छा ब्रह्मा कुमार बनकर अभी स्थान स्थान पर सेवाएं कर रहा है। दीदी जी टीचर ऑफ टीचर्स हैं। आपको लिखने का भी अत्यधिक शौक है। आपने टीचर्स के लिए मार्ग प्रदर्शिका नाम की 5 किताबें लिखी हैं, जिससे टीचर्स को ट्रेनिंग प्राप्त होती है, और हजारों बहनें समर्पित ब्रह्मा कुमारी टीचर्स उसके द्वारा बनती हैं, न सिर्फ लिखने का लेकिन गाने का। और अपनी आयु में तो आप नृत्य में भी बहुत प्रवीण थे, और आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको साकार बाबा से अत्यधिक प्यार रहा, आपने बाबा को अपना दादा, अपना नाना, अपना बाप तो सब बनाते हैं, वो सब कुछ बनाया आपका बचपन, बाबा के अंग संग सारे संबंधों के अनुभवों में बीता, कभी बाबा से ताश खेलते, कभी बैडमिंटन खेलते, बहुत नजदीक के आपके अनुभव हैं। और आज का विषय भी बहुत रमणीक भी, गंभीर भी और पालन करने योग्य भी, मध्याजी भव, जिस सब्जेक्ट पर ब्राह्मणों का कम ध्यान है। बाप दो को याद करने को कहते हैं, बाप और वर्षे को याद करो, बाप को तो सब याद करते हैं, वर्षे को कच्चा पक्का याद करते हैं। तो आज दीदी जी मध्याजी भव पर हम सबको विशेष मार्ग प्रदर्शना देंगे। एक छोटी बच्ची का बहुत दिल है, दीदी को देखते ही कहती है मैंने दीदी को एक गीत सुनाना, बच्चे थोड़ा सा सुनाना, उसको पता है दीदी को ऐसी चीजें बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा गाएगी ट्रैफिक कंट्रोल से पहले।
ओम शांति, हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पे स्वर्ग सजाएंगे, जो बात बड़ों से हो न सके हम छोटे कर दिखलाएंगे। हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पे स्वर्ग सजाएंगे, जो बात बड़ों से हो न सके हम छोटे कर दिखलाएंगे। है भटक रही जीवन नैया, सबकी संसार समंदर में, अब क्या होगा कैसे होगा, तूफान बचा है अंदर में, प्रभु को जीवन पतवारे दो, नैया पार लगाएंगे, जो बात बड़ों से हो न सके हम छोटे कर दिखलाएंगे। हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पे स्वर्ग सजाएंगे। ओम शांति।
अरे वाह, तेरा नाम क्या बेटा?
अहलादिका।
क्या?
अहलादिका।
अहलादिका, वाह नाम भी इतना अच्छा, इतना सुंदर गाया तूने। किसने पक्का कराया? मम्मा ने पक्का करा। तो क्या करेगी अभी? कितनी सुंदर ब्रह्मा कुमारी लगती हो, नन्नी परी लगती हो, नन्ना परिश्ता। सेवा करोगी ना? ओम शांति, ओम शांति। किसकी महिमा करें, बाबा की करें या आपकी करें? बाबा की करें। लेकिन यहाँ तो जिसको देखूं उसमें कौन दिखाई पड़ता है? मुझे तो आज बाबा भी दिखाई पड़ते, लेकिन साथ साथ कुछ और भी दिखाई पड़ता है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि मैं क्या देखती हूँ? जब योग में बैठी तो जब एक एक को देख रही थी, सबकी दृष्टि में ले रही थी, तो हरेक को एक चमकता हुआ सितारे के रूप में देखा। गीत की एक तो लाइनें भी याद आ गई, पता नहीं कहाँ तक गीत बराबर आता है या नहीं, लेकिन कोई को तो ये गीत शायद आता होगा। मैं गा के ही सुना देती हूँ, क्योंकि एक घंटे में मैं आपको बहुत कुछ दे देना चाहती हूँ। जो भी विशेषताएं बाबा ने भरी है ना, तो वो आपको दिखाकर बाबा दिखाना चाहती हूँ। तो ये तारा वो तारा सब तारे, सुना है कोई नहीं गीत? हाँ, किसने सुना है? सुना है तो कुछ लाइन में याद हो तो बताना, शुरुआत की एक दो लाइन बोलनी है। ये तारा वो तारा सब तारे देखूं जिसे वो लगे प्यारे, ये हैं साथ में जो है रात में, तू जगमगाए आसमान सारा। सुना तो आप सभी को देखते हुए सब चमकते हुए तारे दिखाई पड़े, और ये चमकते हुए तारे किसकी किसके बच्चे हैं, किसका साक्षात्कार कराते हैं चमक कर, बाबा का। तो बाबा की याद आने लगी, वैसे ही मधुबन हमारा कण कण में बाबा की यादें भरी हुई है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ का कण बाबा की याद ना दिलाता हो, और खास करके हम जबकि हमने साकार बाप दादा की पालना ली है, यहाँ करके हम कितना रहे हैं, कितना बाबा के अंग संग, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही संग दिन बिताऊं, सब कुछ हमने किया है। कोई भी बात की कसर बाबा ने छोड़ी नहीं, सब अनुभव बाबा ने कराए। लेकिन ये अनुभव कराने के बाद बाबा हमें एक बात सदैव मुरलियों में भी कहते हैं कि तुम बच्चों ने ज्ञान सुना, परंतु क्यों सुना? औरों को सुनाने के लिए। तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो ऐसे नहीं खुद पावन बन गए, घर में रहे खुश हैं, वह हमको बाबा ने ज्ञान दिया, हम पवित्र रहते हैं। बाबा ने कहा इतना पवित्र है ये मन से सोच के बैठ नहीं जाना है, लेकिन औरों को भी पवित्र बनाना है तुम्हें। जो हम करें बाबा के द्वारा वो हमें सबके अंदर देना है और बांटना है। तो इसीलिए जो पालना हमने ली वो आपके आगे हम रखेंगे, आपको बांटेंगे, आपके आगे शेयर करेंगे, और जितना हम देंगे उससे क्या होता है, बाबा कहते हैं ना, लेने की विधि क्या, देना। जितना मैं आपको दूंगी उतना मुझे फिर से मिलेगा, वृद्धि भी होगी और मिलेगा भी। तो मीठे मीठे बाप दादा एक बात रोज रोज हमें मुरली के अंदर कहते हैं कि मीठे बच्चे अभ्यास करो। किस बात का अभ्यास करो? अशरीरी बनने का अभ्यास करो, या कभी बाबा कहते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, कभी बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ इस ही स्मृति में हर कर्म को करने का अभ्यास करो, कभी बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो, कभी बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले चलने। तो रोज ही अभ्यास करो कि अब घर जाना है। तो हम सब यही सुन सुन करके और इसी अभ्यास में लगे हुए हैं कि अब घर जाना है, देही अभिमानी बनना है, अशरीरी होना है, और जितने भी विकर्मों का बोझा है वो सारा हमें योग बल से समाप्त करना है। तो अभी हम सभी घर के घर तक अटक गए हैं क्योंकि घर जाना है। अभी सभी बिछड़े हुए थे ना, हम लोग घर से दूर हो गए थे, बाबा से भी बिछड़ गए थे, तो इसीलिए घर में जाने की हरेक को अधीरता और उत्सुकता है, जल्दी हम घर जाएं। लेकिन घर जाने के पश्चात क्या होगा? घर में बैठे रहेंगे क्यों? यहाँ तो बहुत अशांति है। तो सभी आत्माएं क्या चाहती हैं? हम इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आवे, तो फिर से आने की दिल है क्या? सभी को आने की दिल है? जिसको आने की दिल है वो हाथ उठाओ। मेरे को तो बहुत दिल है। क्यों कोई कोई हाथ नहीं उठाते हैं? देखो मुक्ति में ही बैठ जाओगे, फिर एकदम अंत में आओगे, द्वापर के अंत में। आना कहाँ है? सतयुग में, सतयुग की आदि में, सतयुग के मध्य में, सतयुग के अंत में, त्रेता के स्टार्टिंग में, या त्रेता के मध्य में, या त्रेता के अंत में? कभी आना है? सतयुग की आदि में, पक्का? सभी को सतयुग की आदि में आना है। और किसके साथ आना है? जिसके साथ जाएंगे उसके साथ नीचे उतरेंगे, बराबर है? जाएंगे इसके साथ, आएंगे भी उसके साथ। बाबा तो है ही अपना, वो तो अनादि स्वरूप से, अनादि संबंध से वो हमारा ही है। इसीलिए घर तो जाएंगे, घर अपना है, लेकिन इसके साथ जब हम सतयुग में आएंगे तो बड़े मजे हैं। कौन से मजे लेंगे बताओ भाई? अभी तो हम बहुत छोटे कमरों में होंगे, अभी मधुबन में हरेक को कितनी जगह मिली है, हा? एक कमरे में कोई दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, है ना? और वहाँ क्या होगा कंपैरिजन में? सोचो, बड़े बड़े महल होंगे, कल्पना कर रहे हो? कभी कभी नजरों के आगे लाओ आप लोग, सतयुगी धरती, सब कुछ सात्विक, सब सतो प्रधान, जो भी आजू बाजू दिखता है ना, अति सुंदर दिखता है, उसमें चमकता हुआ, और वो भी किससे चमकता हुआ? सुवर्ण। बाबा कहते हैं वो सारी नगरी क्या है? सोने की नगरी है। तो सोने की नगरी में हमारे सोने के महल, वो महलों में घर है, घर महल का नहीं, महल हमारा घर है। भेद समझ में आया? पूरा महल, और सिर्फ महल नहीं होगा, हर एक महल के साथ क्या क्या होगा? आजकल जो नई नई बिल्डिंग्स बनती है ना, वो बिल्डिंग के अंदर क्या क्या होता है? स्विमिंग पूल होते हैं, है ना? होते हैं ना? वहाँ भी हमारे अपने सरोवर होंगे, हरेक का अपना अपना स्नान का एक अलग तालाब या तो सरोवर जैसा होगा, सुंदर। हरेक अपनी अपनी रीति से वहाँ बड़े मजे से स्नान करेंगे, कोई वहाँ ताला नहीं लगेगा, ना कोई लॉक लगेगा। अभी तो हमको बंद करके स्नान करना पड़ता है, वहाँ तो ऐसा कोई बंधन नहीं होगा। हरेक अपनी अपनी दिनचर्या में जब उठेगा, कैसे उठेंगे? देखो मुंबई में क्या होता है पता है? मुंबई में जब उठते हैं ना, तो उठने से ही हड़बड़ा के उठते हैं, अरे बाप रे कितने बज गए, या तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, या मोबाइल को ऑन करेंगे मोबाइल में देखेंगे कितना बजा। क्यों? जाने की जल्दी, इतनी जल्दी फास्ट लाइफ है वहाँ, उठने से ही घड़ी देखना शुरू करते हैं। तो बाबा कहाँ से याद आएगा? जिसको घड़ी याद आ गई उसको बाबा कहाँ से याद आएगा? और फिर घड़ी देखते हुए हर कार्य को करेंगे, जो भी नित्य क्रम करना है वो सारा नित्य क्रम उनका घड़ी देखते हुए चलता है, और फिर घड़ी देखते हुए दौड़ेंगे। चलते नहीं है, फास्ट भी नहीं चलते, लेकिन सीधा दौड़ते हैं, इतना ही छोड़ो, लेकिन वहाँ पर ट्रेन चलती है, क्योंकि बॉम्बे जो है ना भौगोलिक रीति से सीधी पट्टी है, इसीलिए वहाँ ट्रेन की सुविधा सबसे बेस्ट है। तो हरेक को सुबह सुबह अपनी ट्रेन पकड़नी होती है, और ट्रेन में रीढ़ बकरियां होती है ना लाखों, ऐसी भीड़, इतने आपस में एक दो में चिपके हुए, सांस लेना भी मुश्किल होता है, घुटन होती है, सफोकेशन, इतनी घुटन होती है और सब कैसे चढ़ते हैं, महिलाएं, वहां की महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं, वो साड़ी का पल्लू इधर लेके इधर, जैसे कोई युद्ध के मैदान में जा रही हो, ऐसे वो पल्लू को इधर लगाती और दूर से गाड़ी दिखती है आ रही है और सभी जैसे अस्त्र शस्त्र के साथ रेडी हो जाती है और वो ट्रेन खड़ी रहे तब तक भी इंतजार नहीं कर पाती है और उतरने वाले भी इतने अधीर होते हैं कि वो भी उतरने तक ट्रेन खड़ी रहे फिर मैं उतरूं, नहीं। उतरने वाले भी चलती ट्रेन से, नारियां भी, ऐसे मत समझना भाई लोग, बहने भी चलती ट्रेन से उतरती है और चलती ट्रेन में चढ़ती है। तो क्या होता है आप सोचो, यहां से एकदम घमासान जैसे पानी का एक जोर से फ्लो आता है ना, बहनों का फ्लो उतरता है, उधर बहनों का फ्लो चढ़ता है। अगर उसमें कोई अनजान आ गया जो ये कभी जानता न हो, पता न हो, वो तो इधर से उधर, उधर से उधर, ना वो नीचे उतर पाएगा ना वो ऊपर चढ़ पाएगा और कभी कभी गिर जाएगा तो उसके ऊपर से सभी उसके ऊपर से चले जाएंगे, वो उठने को उसको मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसी हालत होती है। इसमें बाबा कहाँ याद रहेगा, रहेगा याद? क्योंकि हर एक को लगी पड़ी है हम अंदर जल्दी चले, हमारे लिए सीट मिले, सीट मिलने की तो बात ही नहीं होती है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ऐसे मत समझना कि सतयुग की सीटें भर गई है, जल्दी हम लोगों को भी है। बाबा भी कहते बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो और तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण, तीव्र पुरुषार्थ क्या होता है उसकी क्लासेस भी बहुत पीएम टीवी पर भी आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे और यहाँ आते हो तो यहाँ पर भी जो भी वरिष्ठ हमारे भाई बहने हैं, दीदियाँ दादियाँ हैं, वो कराते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ हम कैसे करें। तो तीव्र पुरुषार्थ में हम कभी किसी को नहीं देखते, जैसे ये तीव्र पुरुषार्थी चढ़ते और उतरते हैं, उतरने का तो हमको नाम ही नहीं लेना है, बहुत कुछ हम उतर चुके, बहुत माया ने हमारी बेइज्जती कर ली, जितनी करनी थी उतनी उसने कर ली, अब तो सिर्फ चढ़ती कला का ही नाम है, अब तो बस चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है, पर किसके ऊपर चढ़ना है? ऐसे नहीं हम गलत अर्थ लेकर के और जो आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें बढ़ा रहे हैं, हम उनके ऊपर चढ़ करके और फिर हम अपना दिमाग दिखाएं। एक मजेदार कहानी बीच में याद आ गई। एक बार एक चोर था, चोरी करने रोज जाता था एक गांव से दूसरे गांव, बीच में जंगल पड़ता था तो रोज जंगल से गुजरता था। लेकिन एक बार चोरी करने गया तो उसे कुछ नहीं मिला। अब लौटा, रोज चोरी करके आवे तब रोज घर में परिवार खाना खावे, लेकिन उस दिन उसको कुछ नहीं मिला, बड़ा भारी चिंता युक्त टेंशन में आया तो वापस वही जंगल से गुजरा। बहुत ढूंढा था तो रात भी देर हो गई थी, आखिर थक भी गया। थक गया तो सोचा चलो थोड़ा कहाँ पहले विश्राम कर लूं। विश्राम करने एक जगह दिखी कहाँ पर, जहाँ थोड़ा दिया टिमटिमाता था, तो वहां जाकर के कुछ एक खंभे जैसा था वहां पर जाकर के और हंस करके बैठ गया बस। और वही सोचने लगा तो कुछ मिला नहीं, बच्चे मिलेंगे सामने पूछेंगे आज क्या लाए, क्या खिलाएंगे, आज क्या करूंगा मैं, सोचो मैं बैठा था, बैठा बैठा ऐसे बस आंखें बंद करे, घर को देखे, पत्नी देखे, बच्चे देखे, फिर आंख खोली, आंख खोली तो ऐसा माथा किया था तो उसको सामने एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। खुश हो गया एकदम, अरे वाह ये तो सोने की दिखती है, इसको उठा के ले जाना चाहिए। ये तो मेरा बहुत मासों का मेरा खर्च निकल आएगा। अब वो थी ऊपर, अब ऊपर से उसको पकड़ने के लिए बेचारी ने पहले तो जंप मारी, बहुत कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन वो चीज हाथ में नहीं आई। इधर उधर ढूंढा, कोई साधन नहीं मिल रहा था। आखिर उसने ढूंढ ढूंढ के एक साधन ढूंढ लिया और वो साधन ढूंढ कर वो उसके ऊपर चढ़ गया, चढ़ करके और वो चीज को उसने कैच कर लिया। लेकिन जैसे ही कैच करके उसको अच्छी तरह पकड़ने जाए, वहाँ क्या हुआ, वहाँ तो एकदम रोशनी 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 और आवाज आई, मांग बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए। क्या था जिस पर वो चढ़ा था? शिवलिंग था और वो जलाधरी थी, तो शिवलिंग पर चढ़ गया। अब जो भगवान पे चढ़ जाएगा, भगवान उससे राजी होगा कि नाराज होगा? आप सभी के ऊपर भगवान राजी है? हाँ, जिस पर भगवान राजी न हो वो हाथ उठाए, देखो एक भी नहीं। तो हम सब पे भगवान राजी है, शिव बाबा राजी है, क्यों? हम चढ़ गए हैं उस पर, हम बलि चढ़ गए उस पर। तो बाबा ने भी कहा, मांगो मेरे सिक्की लदे बच्चे, मांगो क्या चाहिए। क्या मांगा हम लोगों ने बताओ, क्या मांगा? घर मांगा? नहीं, क्यों? घर तो अपना ही है, वो तो हम चाहे न चाहे वो लेके ही जाएगा। बाबा कहते हैं ना, तुम पवित्र बनो या न बनो, मैं अंत में आपके हिसाब किताब चुकतू करा के ले ही जाऊंगा, सजा दिला के भी मैं ले जाऊंगा। इसीलिए वहां तो जाना ही है, प्रश्न ही नहीं। तो फिर हमको क्या चाहिए? बाबा मिला सब मिला कि कुछ नहीं मिला, कुछ बाकी है लेने का? देखो फिर बाद में आप बोलेंगे, हाँ सोच लो, पक्का कर लो, बाबा मिला सब मिला कि कुछ चाहिए? देखो मेरे को तो बहुत कुछ चाहिए, आपको चाहिए तो मेरे साथ में हो जाओ, जिसको चाहिए वो हाथ उठाओ, मैं तो हाथ उठाती हूँ। देखो अभी सब हाथ उठाते हैं, मैं तो दो हाथ उठाती हूँ। अभी कई सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा हाथ उठा के बाबा को हम कहते, बाबा तू मिला सब कुछ मिला, तो ये हम कहाँ वफादारी में कुछ कमी तो नहीं कर रहे हैं? हाँ भाई, हाथ क्यों नहीं उठाया आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं उठाया क्या बताएं? पर मैं आपके साथ हूँ ना, फिर डरने की क्या बात है? ईश्वर अपने साथ है तो ईश्वर की बच्ची आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है? फिर भी आप लोग कंफ्यूज हुए? नहीं, हमको चाहिए सबसे बड़े लालची, सबसे बड़े लालची। अगर इस दुनिया में कोई है तो वो कौन है? हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। आपको बाबा मिल गया, आपको घर जाना है फाइनल हो गया, आप पवित्र रहते हो, आप योग भी लगाते हो, तो घर तो आप जाओगे ही, अभी आप क्यों रुके हो इधर? कौन सा पुरुषार्थ करने रुके हो? एक तो पाप कर्मों का नाश करने, अच्छा पाप कर्म नाश करने के बाद भी तो घर ही जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर तो आपको कहीं तो आना है, तो स्वर्ग में आएंगे, सतयुग में आएंगे, सभी आएंगे। अच्छा सतयुग में आएंगे, कुछ नहीं चाहिए? हाँ, बादशाही तो चाहिए, देखो कहती बादशाही चाहिए, खाली बादशाही चाहिए कि और भी कुछ चाहिए? हाँ, प्रजा में जाओगे कि राजा बनोगे? फिर प्रजा में भी नहीं जाना है तो क्या चाहिए? कि मैं राज गद्दी पर बैठूं, मेरा अपना राज्य हो, मेरी प्रजा हो, क्योंकि बाबा कोई प्रजा योग नहीं सिखाते, हमारा है राजयोग। तो हम राजाओं का राजा बनने के लिए बैठे हैं, योग कर रहे हैं पर राजाओं का राजा बनने के लिए। ये जो हम पवित्र तो बनेंगे परम धाम के लिए, तो बाबा हमें मार कूट के भी पवित्र बनाएगा, क्योंकि उसके बगैर हम घर नहीं जा सकते। परंतु सतयुग में आने के लिए बाबा हिसाब का चौपड़ा देखेगा कि मैंने पवित्रता के अलावा और क्या क्या कमाई मैंने की है जो मुझे सतयुग में बाबा भेजे। अच्छा, सतयुग में भी मुझे कहाँ भेजे? चित्रगुप्त को बोलेगा चलो हिसाब देखो इसका, ये प्रजा में जाएगा, साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, नौकर चाकर, दास दासी या राजा, राजा भी छोटे गांव का, बड़े गांव का, फिर महाराजा, बहुत सारे राजा हैं, फिर बहुत सारे राजाओं के साथ महाराजा हैं, महाराजाओं में भी सबसे टॉप का महाराजा वो तो हमारे बाबा जी है, वहां तो हम नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वो तो एक ही होगा, मम्मा और बाबा जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर उनके बाद हम कोई भी राजाई पर हक लगाएंगे, है ना? तो इसीलिए हमारी लालच कितनी है, नौकर चाकर से, नौकर चाकर भी नहीं, बाबा कहते हैं वहां चंडाल नहीं, हम तो वहां भी नहीं, फिर नौकर चाकर भी नहीं, गरीब घर के नौकर चाकर भी नहीं, साहूकार के भी नौकर चाकर नहीं, गरीब प्रजा भी नहीं, साहूकार प्रजा भी नहीं, साधारण छोटा राजा भी नहीं, बड़े गांव का राजा भी नहीं, फिर महाराजा भी नहीं, महाराजकुमार महाराज कुमारी भी नहीं। हाँ, यदि महाराज कुमार महाराज कुमारी बनना है तो मैं इसकी बनूं, यहां तक दाव लगाया है। अब आप लोगों ने भी अपना दाव लगाया होगा, लगाया है ना सभी ने, कुछ तो सोच के रखा होगा, क्योंकि राजाई में जाने वालों को ऐसी धारणाएं करनी पड़ेगी। सारी रॉयल जो राजाओं की महाराजाओं की जो रॉयल्टी होती है, हर कर्मेंद्रिय, चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रिया चाहे स्थूल कर्मेंद्रिया, वहां तो तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, आत्मा भी सुंदर और शरीर भी सुंदर, दोनों पावन पवित्र। न सिर्फ इतना, लेकिन बाबा कहते हैं हर चीज, अगर हम रॉयल हैं तो हमारे लिए जो फर्नीचर होगा वो भी वैसा ही ऊंचा सुंदर। इतना ही नहीं, जो चैतन्य जानवर होंगे, पशु पंछी होंगे, वो भी सुंदर होंगे। कौवा होगा वहां, गद्दा होगा, कुत्ता होगा, देखो आप लोग ही मना करते हो, मोर होंगे, तोते होंगे, चेहरा ही खिल जाता है हमारा। और फिर वहां की दिनचर्या देखो, बाबा ने एक मुरली इतनी सुंदर चलाई है, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन आप अवश्य वो मुरली पढ़ना, इतना दिल बाग बाग हो जाएगा, जिसमें बाबा ने मध्याजी भव, बाबा कहते हैं ना मन मना भव मध्याजी भव, मन मना भव माना बाबा को याद करो घर चलो, मध्याजी भव याद करो माना स्वर्ग में चलो, स्वर्ग को याद करो। तो बाबा ने पूरी दिनचर्या अमृत वेले से लेकर के, और हम कैसे उठेंगे और कैसे सोएंगे वहां तक का सारा वर्णन बाबा ने उसमें किया हुआ है। उठने से ही क्या होगा, हमारे आजू बाजू संगीत बजेगा, वाद्य बजाने वाले बैठे होंगे, वाद्य बजा करके और हमें उठाएंगे, उसके साथ साथ सिर्फ वही वाद्य बजाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन जो कुदरत है वो भी वहां हमारी दासी है। कुदरत में ये पांचों तत्व हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो वायु भी जो बहता है ना, वो भी क्या करेगा, वो भी हमें शीतलता का इतना सुंदर अनुभव कराएगा, और साथ साथ वहाँ के जो नदी झरने वो जो बहते हैं, तो उनकी जो मधुर आवाज है कर्णप्रिय, उस संगीत को लेता हुआ और हमारे कानों में हमारे हृदय को प्रफुल्लित करता हुआ वो पवन या हवा बहेगी। अरे हड़बड़ा के हम नहीं उठेंगे, कितने बज गए, अरे अमृत वेला मिस हो गया, अरे बाबा से आज मिलन मनाने का मेरे को लेट हो गया, ये रात को देर से सोई ना, इसका ये परिणाम, कल रात को ये हुआ वो हुआ, फिर वो चक्र शुरू हो गया, क्यों लेट उठे उसका चक्र शुरू हो गया। अरे लेट हो गया अभी, जब जिस भी कारण से उठे जल्दी जल्दी योग में बैठे, बाबा की याद में टाइम क्यों हम व्यर्थ में वेस्ट करें। लेकिन हमें पता नहीं चलता है, व्यग्रता अधीरता ये हमें बाबा की याद भुला देती है, इसीलिए हमें बहुत शांति से बाबा की याद में सोने का बाबा ने अभ्यास कराया कि सोने से पहले बाबा की याद में सो जाओ। तो अगर रात को आप मध्याजी भव होके सो, वाह क्या तो मखमल के गदेले पर, सोने के पलंग पर, सोने के महल में, और म्यूजिक बज रहा है और मैं वहां सोई हूँ, आप कल्पना करो। अभी तो कल्पना ही करनी पड़ेगी ना, लेकिन जो कल्पना करोगे वो आपकी सत्य सिद्ध होगी, क्योंकि वो सत्य थी, अभी उसने कल्पना का रूप पकड़ा, क्यों, क्योंकि हमें विस्मृति हो गई है। तो याद करते करते सोचते सोचते वो दृश्य एक समय आएगा, हम प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, लाइव अनुभव करेंगे। पीएम चैनल पर सभी प्रोग्राम आते तो कहते ना, अरे लाइव मुरली आ रही है, दादी जी सुना रही है, अरे लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आदरणीय जानकी दादी बोल रही है, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो लाइव में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जो यहाँ चलता है वो हम घर बैठे देख सकते हैं। तो जो सतयुग में है वो अगर हमारे सामने लाइव हो जाए, वाह क्या कहना, ये सब भूल जाएगा, पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, तमो प्रधानता, तमो प्रधान प्रकृति, कुछ ही याद नहीं आएगा। तो रात को बाबा की याद में मध्याजी भव होके सोएंगे और फिर सोचेंगे सवेरे नित्य क्रम के बाद, जैसे वहां हमको कोई उठाएंगे ऐसे उठाएंगे, हम तैयार हो करके फिर जाएंगे बगीचे में, फुल वहां तो बाहरी मौसम, जहां देखो वहां वैरायटी पुष्प खिले हुए होंगे, पुष्पों की सुगंध मीठी मीठी नाक से जाती हुई हमारे मन को तन को दिल को महकाएगी, और इतने में दृश्य देखो, किसको देखना है सतयुग में, हाँ माताएं कहेंगी हम तो मिचनू को देखेंगे, छोटे से नन्हे कृष्ण को, छोटी छोटी कुमारियां होंगी वो कहेंगी हमको बाल कृष्ण देखना है, बड़े होंगे वो क्या सोचेंगे, हम तो ये कल्पना करेंगे कृष्ण आए मेरे साथ रास करे, सुंदर दृश्य होगा, हाँ नर होगी, नर होंगे नारायण जैसे, नारी होगी लक्ष्मी जैसी, हर बाला राधिका समान और हर बालक कृष्ण समान। तो आप कल्पना करो, आज इतने सारे आप बैठे हो, सभी मोर मुकुटधारी सभी सजे सजाए, ऐसे नहीं व्हाइट ड्रेस में हमको मुकुट मुकुट पहनाए, वो नहीं, वो सजावट नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल वो जो राजकुमार राजकुमारियां महाराज कुमार महाराज कुमारी बड़े सुंदर सुंदर गहने पहने हुए, वो भी काय के गहने, अभी तो कईयों ने सच्चे हीरे देखे भी नहीं होंगे, आर्टिफिशियल हीरे ही सच्चे हीरे समझ लिए होंगे। और हीरो में भी कितनी वैरायटी होती है, कितने रंग होते हैं, कितने रूप होते हैं उसके, उन सभी गहनों से सजे हुए। एक मिनट कल्पना करो, सभी सब अपने को सजा सजाया देखो, मुकुट मुकुट सब देखना बराबर पहना है कि नहीं, चलो कौन बताता है क्या क्या पहना। मालाएं पहनी ढेर सारी, फिर भी वजन नहीं। वजन है सिर में, क्या पहना, सिंगल पहना कि डबल, डबल ताज। कान में क्या पहना, भाइयों ने पहने कुंडल, वहां तो भाई लोग भी पहनते हैं, देख लो लक्ष्मी नारायण के चित्र में, वहां तो आपके भी बाल बड़े हैं, देखो विष्णु को देख लो, बाल कितनी सुंदर सबके, बड़े बड़े घुंघरालू, कोई भी बाकी नहीं रहेगा श्रृंगार, जिसको जितनी दिल है ना उतना अपने को श्रृंगारेंगे। और ऐसे सब हम एक दो को देखेंगे और एक दो को देख देख कर क्या होगा, प्रसन्न होंगे। यहाँ तो हर्षित मुख चेहरा बनाना पड़ता है कभी कभी, उसमें भी खास करके जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं, वो व्यक्ति यदि हमारे सामने आ जाए और मुस्कुराए तो हम मुस्कुराएंगे इतना दिल से। अभी तो हम हंस रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल क्या करते हैं, वो अगर प्यार से हमको कहे ओम शांति तो हम भी क्या करेंगे, कहेंगे प्यार से ओम शांति, ओम शांति, या तो जवाब भी नहीं देंगे, एकदम उसको अवॉइड करके जाएंगे, देखा न देखा करेंगे, सुना न सुना करेंगे। इतना अंदर में हम भर के बैठे हैं, क्या भरा, वैर, शत्रुता, क्यों बाबा भूल गया। अब हम बन रहे हैं राजा और रानी सतयुग के, डबल ताजधारी, और उसके लिए मुख्य धारणा बताई बाबा ने, वृत्ति हमारी भाई भाई की अभी करनी है। जब अभिवृत्ति में वो भावना बैठी तो वो नैनों में आएगी, सबसे नजदीक आत्मा के नैन है, तो पहले नैनों में आती है वो बातें, जो भी आत्मा के अंदर भाव उठते हैं ना वो सारे पहले नैनों में आते हैं, या मस्तक की रेखाओं में आते हैं, या फिर चेहरे की रेखाएं बनती है। कोई कोई का चेहरा ही हर्षित मुख होता है और कोई कोई का चेहरा सुजा हुआ मैंने चढ़ा हुआ, बहुत हंसाने पर ही हंसेंगे, और हंसेंगे तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुस्कुराया। तो यदि मुझे मध्याजी भव रहकर मध्याजी भव का आनंद लेना है तो पहले यहाँ संस्कार डालना पड़ेगा, भाई भाई की वृत्ति का संस्कार, फिर दृष्टि से सभी को रूहानी वृत्ति से दृष्टि दें, रूहानी दृष्टि। शिव बाबा के बच्चे हैं तो भाई भाई, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो भाई बहन। फिर हमें मुस्कुराना है, हर्षित मुख रहना है, तो हर्षित मुख बनाते हैं गुण। जितनी गुणों की धारणा ज्यादा होगी उतना हमारा चेहरा हर्षित मुख। फिर हमें निर्भय भी बनना है, कोई भी विषय विकार या माया का तूफान या माया की विपरीत परिस्थिति पैदा करे माया, कोई भी प्रतिकूल संजोग कुछ भी आवे, हम निश्चय बुद्धि हों, निर्भय हों, निश्चिंत हों। क्यों? क्योंकि मेरा साथी कौन है, मेरा हाथ किसने पकड़ा है, मैंने किसके हाथ में मेरा हाथ दिया है। तो बाबा कहते हैं ना, सदैव बाबा के हाथ में हाथ, यानी श्रीमत का हाथ, सदा बाबा का साथ। अगर दूर से माया देखेगी तो माया आने की हिम्मत करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आपके साथ कोई पहलवान चलता हो तो कोई आपको मारने की धमकाने की कोशिश करेगा? नहीं करेंगे। तो ये तो उस्तादों का उस्ताद हमारे साथ, तो संस्कार अभी डालना पड़ेगा। तो हर कर्म इंद्रियों में संस्कार डालना है। सूक्ष्म कर्म इंद्रियों में मन है, मन को व्यर्थ और नेगेटिव से बाहर निकालना है, बहुत साफ करना है उसको, क्योंकि पवित्रता माना शुद्धता, स्वच्छता, सफाई वाला मन चाहिए, एकदम साफ सच्ची आत्मा चाहिए, असली पवित्र आत्मा चाहिए। और वो बनती है श्रीमत से, बाबा की आज्ञा पर चलने से, बाबा से जो भी वायदे किए हैं छोटे बड़े, चाहे खान पान के, चाहे पवित्रता के, चाहे पांच विकारों में से अन्य विकारों के, जब जब जैसी परिस्थिति आई, न रोने के, फिर हमेशा मुस्कुराने के, सदा श्रीमत पर चलने के, रोज मुरली क्लास अटेंड करने के, जो भी हमने छोटे बड़े वायदे किए हैं, जो उसमें आज्ञाकारी, वफादार और प्रामाणिक, जो कोई को पूछना न पड़े, रोज क्लास करते हो, अमृत वेले उठते हो, रोज मुरली पढ़ते हो, रोज बाबा के घर में आते हो, सेवा करते हो, अपना सब कुछ बाबा को समर्पित किया है, सब कुछ बाबा का है कि आपका है, कुछ भी किसी को पूछना न पड़े, लेकिन हमारा व्यक्तित्व, हमारी चलन, बाबा कहते हैं ना चेहरा हर्षित मुख किसके जैसा, हम खुद राजा महाराजाए हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख चेहरा, चलन भी हमारी रॉयल, डबल रॉयल्टी, एक तो ईश्वरीय कुल के, फिर ब्रह्मा के बच्चे, तो प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करने वाले सच्चे ब्राह्मण, और फिर एडिशन मैं सतयुगी देवी देवता महाराजा महारानी हूँ। तो कितनी रॉयल चलन, बाबा ने तो इतनी छोटी छोटी बातें सिखाई है, मुझे तो ये क्लास करने के लिए एक बरस चाहिए पूरा। रोज मुझे कहोगे मैं रोज आपको बताऊं इस पर, चंडीगढ़ आके बैठ जाऊं। अच्छी बात बताई, बहुत, जब आपने कहा चंडीगढ़ आओ तो मुझे अचल दीदी जी बहुत याद आ गई, इतनी बार मुझे कह चुकी हो, नलनी बहन आप एक बार टाइम निकाल के उधर आओ, भट्टी कराने आओ, ये करने आओ, वो करने आओ। तो आज अचल दीदी की फुलवाड़ी को देखकर कितना आनंद आता है। चेहरा देखती हूँ तो उनकी भी साथ साथ सूरत दिखाई पड़ती है। ईश्वरीय प्यार है हम लोगों का ये, तो इसीलिए हमको चलन भी ट्रिपल रॉयल। और फिर अगर लौकिक भान में रहते हो तो लौकिक भान में भी हमको अपने माँ बाप का नाम बाला करना है। कोई ऐसी चलन नहीं चलनी है। ब्रह्मा बाबा तो कहते ही हैं कई बार मुरलियों में, मीठे बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना, कहते हैं ना। तो चलन में भी हमारी हर बात की रॉयल्टी दिखने में आनी चाहिए। एक तो मांगने का बिल्कुल संस्कार नहीं, यहां तक कि भगवान से भी अभी हम नहीं मांगेंगे। ये मांग कर्म किसकी इंसल्ट करते हैं? बाबा की। क्यों? बाबा अपने आप नहीं देता हमको? देता है हमको। इतने छोटे बच्चे नहीं है, कई कहते हैं मांगने से दूध भी, माँ से मांगे नहीं बच्चा रोके तो माँ दूध भी नहीं देती। लेकिन हमको इतने छोटे बच्चे तो नहीं है, अभी हम वारिस क्वालिटी के प्रॉपर्टी के हकदार बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं। कहते हैं ना हम सब, बाबा की प्रॉपर्टी पर हक किसका है? अज्ञानियों का है कि हमारा है? शास्त्रवादियों का है कि हमारा है? धार्मिक लोग हैं उनका है कि हमारा है? आस्तिक लोग जो अपने को कहते हैं उनका है कि हमारा है? हमारा है। स्वर्ग की प्रॉपर्टी पर अगर किसी विषयी विकारी या अज्ञानी जन जो बाप को नहीं जानते, मानते भले हैं यथार्थ जानते नहीं, मजाल है प्रॉपर्टी पे हक तो लगाए। होता है ना ऐसा? अगर चंडीगढ़ में आपकी अपनी कोठी है, आपकी कोठी पर कोई नजर डाले और कहे कि ये कोठी मेरी है, क्या करेंगे आप? या तो पहले झगड़ा करेंगे, तू कौन है भाई, कहां से पैदा हो गया, इतने वर्षों से हम रह रहे हैं, दिखाओ कागज आदि, प्रूफ दो, कोर्ट में केस करूंगा, करो कोर्ट में केस करो। क्यों? हमारे पास उसके कागजात आदि है। तो हम सब अभी हाथ में हमारी फाइल है, स्वर्ग के महलों की फाइलें हैं हमारे पास, कोई दावा नहीं कर सकता उस पर। आया समझ में? ऐसा नशा जिसको कहते हैं नारायणी नशा, रूहानी नशा, ये नशा रहता है हमको। जब सुनते हैं तो नशा चढ़ता है थोड़ा टाइम, फिर सीढ़ी जैसे जैसे उतरेंगे यहां से नशा भी उतरता जाएगा, फिर बाप की महिमा भी एक बाजू रही, क्लास कराने वाली की भी दो चार घड़ी महिमा कर ली, वाह क्या तो आज क्लास कराया दीदी ने, कितनी अच्छी बातें बताई, ये वो, फिर धीरे धीरे और नीचे आ जाएंगे, फिर क्या होता है मैं नहीं बताऊंगी, पटरी बदल जाती है, वो ट्रेन पटरी बदलती है ना, तो ट्रेन पटरी बदल देती है हमारी बातों की। तो पहले हम व्यर्थ को खूब मिटाएं, मन से मिटाएं, बुद्धि से मिटाएं, संस्कारों में आदतों के रूप में जो घुस गई है बातें वो मिटाएं। जो जितना मिटाएगा ना वो सतयुग की राजाई के अनुभव में बड़े मौजों में रहेगा। पुष्पक विमान, हमारे अपने सोने के हीरों के रथ, खेलेंगे तो भी बाबा कहते हैं हीरे मोतियों से खेलेंगे। कहां तो हम हीरे मोती देख ही नहीं रहे हैं, कहां तो हीरे मोतियों से खेलेंगे, कहां तो घी दूध की नदियां बहेंगी। नदियां बहेंगी माना सचमुच घी दूध नहीं बहेगा, यानी इतनी जाहो जलाली होगी तन अन्न से धन से और सुवर्णों से हीरे मोतियों से हमारे भंडार भरपूर होंगे, लेकिन भंडार में सिर्फ भर के रखना नहीं होता है। जब अभी आदत डाली होगी दान करने की, जो दान करता है उसकी वृद्धि होती है, उसका उसको जंक नहीं लगती है। तो अभी से वो आदत हमको डालनी पड़ेगी, जो सुना दूसरों को तुरंत सुनाए। तो सुना ना, तीन कठपुतलियां, एक के कान में डाला तो दूसरे कान से निकला, एक के कान में डाला तो मस्तक में रह गया, तीसरे के कान में डाला तो सीधा पेट में गया। शॉर्ट में बताई स्टोरी। इसका मतलब बाबा के बच्चों में भी ये तीन प्रकार के बच्चे हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं। वही तो बाबा रोज कहते हैं, तू आत्मा है मुझे याद कर, विकर्म विनाश कर। मुरली फट 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 पढ़ लेते हैं, 10-15 मिनट में मुरली पूरी हो जाती है। अरे भाई, मुरली में देखो तो सही, आईना है, पारदर्शी है मुरली, और अपना चेहरा दिखाती है मुरली। मैंने क्या धारण किया, क्या नहीं किया, मुझे क्या करना बाकी है, बाबा बताता है। और जो बाकी है वहां बाबा कहता है, बच्चे चल, मैं हूं तेरे साथ, तेरे साथ हूं, हिम्मत रख, आगे बढ़। सब कुछ है मुरली में, चाहे प्रश्न हो, चाहे समस्या हो, चाहे कोई बात अच्छी लगी नहीं, सबके जवाब मुरली के अंदर। जिस दिन अमृत वेला अलबेलेपन में मिस किया, तुरंत मुरली का एडी गाएगा, बच्चों को अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। होता है ये, जिस दिन गुस्सा करेंगे मुरली का शीर्षक होगा, तू आत्मा का स्वधर्म शांति है। क्या तो बाबा हमको मदद करते हैं, पल पल मदद करते, जैसे कण कण में यहाँ बाबा की याद समाई हुई है, ऐसे मुरली के एक एक शब्द के द्वारा बाबा हमें कितनी मदद करते हैं। तभी तो हम बच्चे कहते हैं, शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। तो ये बातें याद करो, व्यर्थ को ऐसे समर्थ बना दो, आपस में मिले तो ये बातें करे, प्लानिंग करो ना मध्याजी भव का, मेरे महल में क्या होगा, तेरे महल में क्या होगा। दुर्योधन को धोखा मिला, ऐसा हम भी कोई जादू के महल बनाएंगे, जहाँ पानी है वहाँ जमीन दिखे, जमीन है वहाँ पानी दिखे, महल में प्रवेश करे तो ऐसा लगे आसमान में महल बना हुआ है। प्लानिंग करो अपने महलों की, कैसा महल होगा, कैसा मेरा पुष्पक विमान होगा, कैसे मेरे गहने होंगे। अभी शौक नहीं है, अभी हमको सिंपल रहना है, सही बात है, लेकिन अभी आपको एकांत मिला है, एक के अंत में भी हो, एकांत भी हो, फिर अकेले भी हो। अब कोई भी प्लान बनाओ बिगाड़ो, कोई आपको नहीं देखता। जो कोई कहे हंस करके, ये क्या बना दिया है। कईयों को रोटी बनानी नहीं आती है ना, जैसे गुजराती लोग बहुत गोल गोल रोटी बनाते हैं, तो जिनको आता नहीं वो पहली बार जब बनाते हैं ना, तो कोई पंजाब का नक्शा बना देता है, कोई महाराष्ट्र का बना देता है, कोई कहाँ का बना देता, तो फिर हंसते हैं कि ये क्या किया। तो इसीलिए अच्छी तरह प्लानिंग करो बाबा की याद में, फिर बाबा को भी दिखाओ, बाबा मैं आपका ऐसा बच्चा बन रहा हूं, मैं यही बनूंगा, आपका शो करूंगा, ये धारणा की कमी है, मैं ये धारणा यहाँ प्रतिज्ञा करके जाता हूँ। भट्टी में क्यों आए हैं, रंग रूप गंध सुगंध और उपयोगिता, ये सब मेरी बनाने आया हूँ। सब कुछ मेरा बदल जाए। ईंटें पकती है, अभी तो बहुत पक लिया, ईंटें तो बन गई, सब ईंटें पक गई है, फिर हम भट्टी में क्यों आते हैं बार बार? बार बार टीचर्स बहने भट्टी क्यों रखती हैं? क्योंकि ये बहनें भी बड़ी लालची हैं, इनको ये मिट्टी वाली ईंटें नहीं चाहिए। कौन सी ईंटें चाहिए? सोने की ईंटें चाहिए। अभी ये क्या कर रही है? मिट्टी को सोना बना रही है। तो अभी सोने की ईंटें बनना है, फिर ईंट से हम क्या बन जाएंगे? महलों में रहने वाले राजाएं महाराजाएं बन जाएंगे। और भोजन, आह, आप कल्पना करो, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, सब नजरों के आगे लाओ। क्या अच्छा लगता है बोलो? नहीं, तला हुआ नहीं होगा, पर बिना तला हुआ भी बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ, बोलो क्या होगा वहाँ? नहीं नहीं, सब होगा वहाँ, रसगुल्ले होंगे, गुलाब जामुन भी होंगे, लेकिन विधि अलग होगी, वहाँ नेचुरल होंगे। और आपको पीने के लिए कितने रस होंगे पता है वहाँ पर? आप बगीचे में चले जाओ, यहाँ तो इतना इतना संतरा, वहाँ तो इतने बड़े बड़े फल, आप जूस पियो जिसका भी चाहिए, खरबूजे का पियो, तरबूज का पियो, संतरे का पियो, मौसम्बी का पियो, अपना सेब का पियो, जो भी चाहिए पियो, कुछ नहीं धोना भी नहीं पड़ेगा। देखो अभी भी खेतों में जाते हैं ना, सीधा डायरेक्ट तोड़ के खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? सब्जियां भी खाते ताजी ताजी तोड़ के मुंह में डालते, कौली कौली होती है ना, तो वहां तो है ही सत्व प्रधान, वहां तो कपड़े भी गंदे नहीं होते, फिर भी वहां कितनी बार बदली होती है कपड़े पता है? बाबा ने क्या बताया था? 6 बार कपड़े बदलते वहां, क्यों? फुर्सत ही फुर्सत है वहां, करना क्या है वहां? करना तो ही नहीं कुछ, खाना पीना और मौज करना है वहां। अभी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए खूब मेहनत करो ताकि वहां कुछ नहीं करना पड़े। हमें पहले पहले शुरू में दादियां कहती थी, देखो यहाँ जितना ज्यादा सोओगी वहां इतना सोने को नहीं मिलेगा, मना नौकर बनना पड़ेगा। जितना यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे वहां इतने अच्छे कपड़े तुम्हारे कम हो जाएंगे। तो हमें भी लालच रहती थी क्या हमको यहाँ बिल्कुल एकदम सिंपल रहना है, तो इसीलिए जितना हम यहाँ सब कुछ मौज करेंगे ना, त्याग तपस्या को छोड़कर वहां सब हमारी निकल जाएगी वो। और अगर आपको गुजराती में कहते हैं, कोई बहुत साहूकार होते ना तो उनको कैसे पाला जाता है? खटले से पटले पर, पटला माना एक नीचे चौकी होती ना, उधर से उठाया उधर, उधर से उठाया उधर, माने जमीन पे पांव नहीं। और बाबा के शब्दों में कहूं तो, बाबा ने जैसे मुझे पाला, पलकों पे पाला। तो हम सबको बाबा पलकों पे पाल रहा है। आप कहेंगे पलकों पे कैसे पाला? इधर माया हमको कितना हमारा खून खराब कर रही है, काय के पलकों में पल रहे हैं? वो तो माया कर रही है ना, बाबा तो नहीं कर रहा, बाबा तो मरहम लगाता है। माताएं आती थी बाबा के पास जब भी पहली बार, तो कोई कोई को देखकर बाबा एकदम उनके पांव छूते थे और उनके दबाने शुरू करते थे। क्यों? बाबा कहते थे, बच्ची तुम बहुत थक गई हो ना भक्ति के धक्के खा खा करके, मुझे ढूंढने के लिए तीर्थों के धक्के खा खा करके थक गई हो ना, अरे ऐसा महान पिता कहाँ मिलेगा, ऐसा महान गुरु कहाँ मिलेगा। आने से ही बाबा माताओं के आगे खड़े हो जाते थे और बाबा कहते थे वंदे मातरम। और आजकल के गुरु पांव नहीं छुओ तो माताएं डरती हैं, शिष्य उनके डरते हैं, फॉलोअर्स डरते हैं, कहां गुरु जी श्राप न दे देवे। और यहां बाबा कहते हैं बच्चे चलो गलती हो गई, फिर से पुरुषार्थ करो, फिर से उठो, फिर से मेहनत करो, है ना। तो इतनी करुणा, इतनी दया, इतना प्यार कहां मिलेगा, कोई नहीं दे सकता। ये तो बेहद का बाप है ना, इसीलिए सब कुछ बेहद का देता है। राजाई भी बेहद की, खाओ भी बेहद, पियो भी बेहद, है ना, बहुत सारी बेहद की चीजें पदार्थ सब कुछ हमारा बेहद का होगा। टाइम हो गया मेरा, मैं तो सोचा मैं आपको नचाऊंगी भी खुशी में। अभी हमारे वरिष्ठ भ्राता आमिर चंद जी का क्लास है, उनका टाइम मैं कैसे लूं। वो गीत गाऊं उसमें नाचने का नहीं होगा, और फालतू में आप लोगों को साकार बाबा की याद आएगी, कहीं ऐसा ना हो फिर दिल शिकस्त हो जाओ कि हमने बाबा को नहीं देखा। जो बाबा के आगे पहला गीत गाया ना वही सुना देती हूँ आपको। फर्स्ट टाइम पहली बार आई, और छोटे बच्चे होते हैं ना जरा सामने से अकल ज्यादा होती है ना, उसको हमारे में डेढ़ अकल वाले कहते हैं। तो सामने से बोला बाबा मैं गीत गाऊं, छोटी तो थी मैं, तो बाबा ने कहा गीत गाएगी। मैंने कहा बाबा मैं बहुत अच्छे गीत गाती हूँ। तो बोला अच्छा गाओ। मैंने कहा पर मुझे भजन नहीं आता है, पिक्चर का गीत। बाबा ने कहा सुनाओ बच्ची। मैं बैठी बाबा के पास, बाबा ये जो बाबा का कमरा है ना, वहाँ बाहर जहाँ जूते उतारते हो ना, वहाँ ऐसे आधी वो बैठने की बैठक थी, पूरा दीवार नहीं थी। तो वहाँ बाबा की खटिया रहती थी, बाबा निमा शाम को वहाँ बैठते थे, अकेले होते थे, कभी कोई पार्टी से मिलते भी थे, कभी मेरे जैसी कोई आ जाती थी बच्ची तो उनसे भी बातचीत करते थे, तो मैं भी चली जाती थी शाम को अक्सर बाबा के पास, खींची हुई चली जाती थी। तो बाबा को बोला तो कहा अच्छा सुनाओ। बाबा की खटिया पे बाबा लेटा हुआ है, मैं बैठी हुई हूँ। फिर मैंने गीत सुनाया बाबा को, ये महफिल सितारों की, रात ये बहारों की, ऐसे में छेड़ दे तराना कोई प्यार का, ये महफिल सितारों की, ये भीगी हवाएं सुहाना शमा, कोई लेके दिल छिप गया है कहाँ, चले आएंगे जमी आसमां, बुला के तो देखो इसी की जुबान, मोहब्बत के दिल में क्षमा जब जली है, आएगा आएगा परवाना कोई प्यार का, ये महफिल सितारों की, मेरे दिल के अरमां जगाओ नहीं, हंसी प्यार की तुम उड़ाओ नहीं। असर कर गई है ये बातें तेरी, बुला के तो देखो किसी की जुबान, मोहब्बत के दिल में शमा जब जली आएगा आएगा परवाना तेरे प्यार का। ये महफिल सितारों की।
ओम शांति। थोड़ा भूल गया दो तीन लाइनें। मेरे को हुए हैं 64 इयर्स ज्ञान में, माना 53 या 54 तभी की बातें। खूब बाबा के आगे गीत गाए, डांस भी किए, खेला भी खूब, बैडमिंटन खेला, फुटबॉल खेला, फिर ताश भी खेले, फिर ये जो रखते हैं ना स्पर्धाएं, तो आलू इकट्ठा करना, अलग अलग नहीं रख के फिर एक बास्केट में दौड़े, एक लिया फिर दूसरा लिया तीसरा लिया, फिर चम्मच में गोटी रख करके गोटी चम्मच, ये सब कुछ बाबा के पास किया। फिर खाया भी, गिट्टियां बहुत खाई, ग्रास बाबा के हाथों से गिट्टियां बहुत खाई, बाबा के साथ घूमने भी गए, बहुत योग बाबा ने कराए, प्यार भी बहुत किया बाबा ने भी हमने भी। मैं तो बिल्कुल दादा नाना समझ के आई थी ना, तो इसीलिए मेरे अंदर वो बचपन आई था, तो मुझे प्यार ही प्यार मिला। मैंने बाबा को प्यार के सागर के रूप में ही देखा है और बाबा ने भी खूब प्यार लुटाया मुझे, क्योंकि मेरे दादा नाना मैंने देखे नहीं थे, इसलिए मुझे बहुत दादा नाना की आस रहती थी। तो वो मैंने बाबा को बताया कि मुझे दादा भी मिल गया नाना भी मिल गया। क्या करे, डांस करो। वाह भाई वाह, देखो इसको कहते हैं हकदार, कैसा हक लगा रही है, देखो ऐसा हक हमको लगाना है स्वर्ग के ऊपर। सुना, अभी बैठे बैठे डांस कर सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई डांस करने की बात आई तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साल हो गए, अभी पहले तो मोटी थी अभी थोड़ी कम हुई हूँ, पहले सबसे ज्यादा यज्ञ के अंदर हम दो तीन बहने ही मोटी थी। हाँ सब कुछ हो गया, बैठे बैठे गीत गाओ तो मैं बैठे बैठे करूँ, आप आ जाओ सामने, तेरे द्वार खड़ा भगवान, सबसे पहला डांस। छोटी उम्र में स्कर्ट ब्लाउज पहनती जैसे छोटे बच्चे पहनते हैं, तो वो भी मैंने ही बोला सामने से, बाबा मैं डांस करूं, बाबा ने कहा अच्छा डांस करोगी, मैंने कहा हाँ, बोला करो, तो तभी थोड़ा थोड़ा ज्ञान में थोड़ा आना जाना शुरू किया था, तो थोड़ी अक्कल आई थी, तो इसीलिए कोई भगवान पे ही डांस करना चाहिए, कोई ऐसा गीत लेकर के, पुराना गीत है अभी शायद वो बजता भी नहीं है,
है तेरे द्वार खड़ा भगवान। बजाओ भाई, चलो माइक को हटाना पड़ेगा, थोड़े हाथ पांव हिलेंगे।
तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। ढोल उठी है सारी धरती देख रे ढोला, गगन है सारा ढोल उठी है सारी धरती देख रे ढोला, गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सरबत अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे रे सरबत अपना मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा फल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे।
मजा आ गया ना? बहुत 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 धन्यवाद, सबको खुशी के आंसू आ गए, बाबा की यादें आ गई, सड़क के नजारों में डूब गए। दिल तो करता है बैठे रहें, सुनते रहें, देखते रहें, पर घड़ी कुछ कहती है, इसलिए एक मिनट साइलेंस।